تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 35 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور مقرر کیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کے وزیر کے طور پر, یعنی مددگار. وزیر کا لفظ ہمارے ہاں تو پرائم منسٹر اور وزارت اور کچھ اس طرح کے ناموں میں آتا ہے, لیکن اس کا روٹ جو ہے وزر ہے, واو زا رو. وزر کہتے ہیں بوجھ کو, تو وزیر بوجھ اٹھانے والا, ہیلپر, یعنی مملکت کے جو کام ہوتے ہیں اس کو جو بادشاہ خود نہیں کر پاتا تو اس کو وزیر اس کی مدد کرتا ہے, اسی سے پھر وزارت کی بات ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ دوبارہ ایک بار پھر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے چل رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلے لوگوں کے طرز عمل میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے کہ جو برے کام کر کے, غلط کام کر کے دنیا سے مٹے, اگر آج کے لوگ بھی وہی کام کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی انجام ہوگا جو کہ پہلوں کا تھا. اور موسیٰ کے ساتھ جہاں ہارون کا ذکر کیا اور بتا دیا گیا کہ کوئی کام دین کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی انسان دوسرے کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی کمی تھی, بعض کہتے ہیں بولنے میں کمی تھی, لکنت تھی, وٹ ایور, چھوڑ دیجئے, لیکن ایک کمی یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دین کی طرف لوگوں کو بلائے یا اللہ کے راستے کے طرف نکلے تو اس کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے. جتنے دوسرے لوگ, ہم خیال لوگ اس کے اس کام میں ملتے جاتے ہیں, اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگ کر وسعت قلبی کا بھی ثبوت دیا کہ کوئی بات نہیں, ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتی لیکن مجھے کرنا تو ہے, تو جب کرنا نہیں آتا تو کسی ایسے کو ساتھ ملا لیں جس کو وہ کام کرنا آتا ہو. بعض دفعہ دین کے نام پہ حرفن مولا یا ون مین شو کے طور پہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں ہی لینے کا شوق ہوتا ہے, یہ درست رویہ نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ آپ دین کا وہ کام کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں, جو کام آپ نہیں کر سکتے کسی دوسرے کی مدد کر دیجئے یا اس کو اپنے ساتھ ملا لیجئے جو وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ دین کے کئی رنگ ہوتے ہیں نا, مثلا ہم صرف اپنی اس کلاس کا تذکرہ کریں, یہاں تجوید بھی چاہیے پڑھانا, گرامر بھی پڑھنی ہے آپ کو, تفسیر بھی ہے, آپ کی گروپنگ بھی ہے, کئی مختلف کام ہیں نا. اب اگر ہر فیلڈ کا ایک ماہر بندہ آ کر آپ کو وہ سبجیکٹ پڑھائے تو کیا اس کا زیادہ اچھا افیکٹ آئے گا یا ایک ہی بندہ صبح سے کلاس کے اینڈ تک سارے سبجیکٹ پڑھائے؟ یقیناً پہلی صورت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ جو کام کر سکتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے کیجئے اور اس میں مہارت قائم کریں, اس میں اپنی پہچان بنائیے, آئیڈینٹیٹی بنائیں, اور اگر کوئی دوسرا کام دوسرا آپ سے اچھا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے تو صرف کمپٹیشن کے نام پہ, صرف اس بات پہ کہ فلاں کر رہا ہے تو ہم نے نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا, اس سے انرجی ویسٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر کوالٹی نہیں آتی. ایک بندہ جب ایک چیز کراتا ہے تو اس کے اندر وہ جو بات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تو نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے لیے نبوت مانگی اور چونکہ دل میں کوئی بغض نہیں تھا تو ان کو یہ احساس تک نہ ہوا کہ شاید ہارون کے آنے سے میری ویلیو کم ہوگی. یاد رکھیے کہ کسی کے آنے یا جانے سے ویلیو کم نہیں ہوتی. سورج بنیے تاکہ اس کے آگے ہزاروں چراغ بھی بنے ہوں تو وہ چراغ نہیں سورج ہی دکھے گا. ہاں جب ہم ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو نائٹ بلب ہوتے ہیں, تو پھر تو چراغ چھوڑیے, سورج چھوڑیے, ایک بڑا سا بلب بھی آئے گا تو ہماری روشنی کم ہوگی. بعض دفعہ شیطان انسان کو اپنی کمیاں دور کرنے کی طرف تو مائل نہیں کرتا, لیکن اس پہ کر دیتا ہے کہ اچھا فلاں کی وجہ سے میری طرف سے لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں گی. تو جن کو پیغام سے محبت ہے, جن کو اللہ کی بات پھیلانی ہے, وہ تو پھر اس چیز کا بالکل کوئی لحاظ نہیں کریں گے کہ کس کو بلانے سے, کس کو آنے سے, کس کے رہنے سے یہ چیز اچھی ہوئی اور کس کے سے بری ہوئی. اور جب ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو پھر دونوں کو حکم کیا ہوا, فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اب آپ دونوں جائیے اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو. دیکھیے کہ ہر نبی کے تذکرے میں بات آتی ہے فَذْهَبْ, جاؤ, ایک کو کہا, لیکن یہ دونوں بھائی کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان دونوں کو کہا جا رہا ہے اب آپ جائیے. یہ فائدہ ہوتا ہے, وسعت قلبی کے ساتھ اللہ کی ڈبل رحمتیں پاتا ہے انسان. अल्लाह ताला की मदद भी ज़्यादा आती है और जो तकलीफ़ें या आजमाइशें आती हैं तो उसको बांटने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। बहरहाल दोनों मूसा और हारून जो थे फिरौन की तरफ गए, इशारा कर दिया गया अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना कहकर, नाम नहीं लिया गया क्योंकि कुरान पाक का ये मिजाज ही नहीं है। बहुत कम अल्लाह ताला ने लोगों के नाम ले लेकर उनको रुसवा किया है या उनकी बात की है, बस पता लग गया, समझने वालों को खुद ही पता चल गया यहाँ कौन है। हाँ, उनका अंजाम भी बता दिया, फदम्मरना हम तदमीरा, फिर हमने तो उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। दम मारा यो दम मेरु ऐसे होता है जैसे कुंडी में कूट के चाट देना, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि उनकी ईंट से ईंट बजा दी, मलिया मेट कर दिया हमने उनको, कुछ नहीं रखा उनको हमने उसके अंदर बाकी उनका, और वो अपने आप को बिल्कुल ही पा न सके। और इसके बाद फिर क्या, एक और कौम का तस्करा जो तरतीब के एतबार से तो आगे थी, लेकिन यहाँ पहले मूसा का तस्करा आ गया। और कुरान पाक का यही मिजाज है कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ज़माने की तरतीब के साथ जो होती हैं उस तरह पेश की जाती हैं, और बाज़ चीज़ें हालात और वाक़यात के मुताबिक पेश की जाती हैं। सूरत फुरकान चूँकि सूरत फुरकान है, इसमें हक और बातिल का फ़र्क बयान किया जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ मूसा का तذکرہ पहले आना इस बात की भी दलील बनता है कि मूसा के जो हालात थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते हालात थे, तो लिहाजा उनके साथ हारून को भेज दिया जाना एक दलील बन गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये फरमाया था कि मुझे तुमसे वही नस्बत है या तुमको मुझसे वही नस्बत है जो हारून को मूसा से थी, यानी दोनों भाई भी थे और अल्लाह ताला ने पैगाम के लिए चुना। तो बहरहाल ये दोनों गए और वो कौम नीस्त व नाबूद हो गई, और इसके बाद व कौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, और कौम नूह को याद करो जबकि उन्होंने छुटलाया रसूलों को। ये कौन से रसूल थे, वहाँ तो एक थे। देखिए रसूल कौन सी जमा, जमा मुकसर रसूल की, यानी कौम नूह ने छुटलाया तो एक रसूल को था क्योंकि उससे पहले तो बाकी रसूल आए भी नहीं थे, तो फिर यहाँ रसूल का लफ्ज़ क्यों आया। तो इसके लिए मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा है, नंबर एक जो हम आगे भी पढ़ेंगे एक और सूरत के नाते से, और वो क्या कि जिसने एक नबी को झुटलाया उसने सारे रसूलों को झुटला दिया। नूह अलैहिस्सलाम नबूवत की पहली कड़ी थे, जिसने पहली कड़ी कोई ना पकड़ा वो अगली पे कहाँ चढ़ेगा, एक ये मानी बना। दूसरा ये है कि उन्होंने नफ्से रिसालत का ही इनकार किया, यानी जिसको आप कह सकते हैं ना कि उन्होंने लफ्ज़ नबूवत को माना ही नहीं कि रिसालत भी कोई चीज़ होती है, रसूल भी कोई चीज़ होता है, लिहाजा हम उनको नहीं मानते। और आयात कौन सी थी जिनको उन्होंने झुटलाया, आप देखिए कि हर नबी की तरफ से मुख्तलिफ निशानियाँ अल्लाह ताला ने दिखाई गई ना, तो अल्लाह ताला ने कौमे मूसा को तो निशानियाँ दिखाई थी ना, और लोगों ने कज़्ज़बू भी आयात ही ना कहकर झुटला दी थी, लेकिन कौम नूह को अल्लाह ताला ने क्या किया, वजालना हुम आयतन लिन्नास, और हमने इनको दूसरों के लिए इबरत बना दिया। कुछ को निशानियाँ दिखाई जाती हैं और कुछ को निशानी बना दिया जाता है, और यकीनन जो लोग निशानी बना दिए जाते हैं वो ज़्यादा इबरतनाक सज़ा पा रहे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने जब झुटलाया गरक ना हम, हमने गरक कर दिया, कैसे आसमान और भी बरसा और ज़मीन भी बरसी और इस तरीके से उनको उठा के फेंका गया, और उसके नतीजे में फिर आखरत का अजाब तो खड़ा ही है। वातना लिज़ालिमीन अजाबन अलीमा की सूरत में, कि मत सोचो कि दुनिया के अजाब में ये डूब गए, पानी में जो डूबे तो अब इसके बाद इनको और कुछ नहीं तकलीफ़ होगी, नुकसान नहीं होगा, वो आखरत का अजाब जो वो तो बाकी ही है और वो रहेगा। इसी तरह कुछ और कौमें, व आदम व समूद अब असहाब अर्रसी, और याद करो कौम आद को, समूद को और असहाब रस को। ये लफ्ज़ पहली दफ़ा यहाँ आया है, असहाब और रस, रस का मानी होता है कुआँ, तो असहाब और रस कौन हुए, कुएँ वाले लोग, ये कौन है। इसके बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद हैं असहाबुल अखदूद, जिनका तस्करा आएगा सूरत अलबरूज में। एक ऐसा दौर था कि बादशाह ने जब लोगों को खंदकें खोद कर जलवा दिया था, तो बाज़ कहते हैं कि इससे उनकी बात मुराद है। बाज़ कहते हैं ये एक ऐसी कौम थी जिसने अपने पैगंबर को मार कर कुएं में फेंक दिया था, नऊज़ु बिल्लाह, और उल्टा लटका कर मारा था। और रस कहते हैं पुराने कुएं को, हम पीछे पढ़ चुके ना फी जुब, जुब सूरह यूसुफ में पढ़ा था, वो कुआँ होता है जिसकी दीवारें ना हों लेकिन रस अंधे कुएं को, पुराना कुआं जिसके अंदर कोई चीज ना हो, पानी ना हो। वकुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा, और बहुत सारी बस्तियां इन सब के बीच में गुजरी, यानी एक नबी से दूसरे नबी के बीच में कई बस्तियां गुजरती गईं, कई कौमें आईं। कुरून, करन की जमा, हर दौर में मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों की नसीहत के लिए इहतमाम किया, लेकिन लोगों को ये चीज़ें रासी नहीं आती। नतीजा क्या हुआ? वकुल्लन दरबना लहुल अम्साल, हक को समझाने के लिए हमने बयान की हर एक के लिए मिसालें, हर तरह की मिसालें हमने बयान कर दी हक को समझाने के लिए, लेकिन जब लोग ना माने तो क्या हुआ? वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा, और हमने सबको नीस्तो नाबूद कर दिया। ताबारा तिब्र, पीछे भी हमने पढ़ा है हज़रत मूसा के कि एक दुआ के नाते से कि अल्लाह ताला इनको तो बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो फरमाया कि हमने इनको बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया, कोई चीज़ इनकी नहीं बची कि जिससे इनकी कोई निशानियाँ मिल सकती। और इसके बाद इंसानियत का काफिला चलते चलते कहाँ चला? वलक़द अतौ अलल क़रयति अल्लती उमतिरत मतरस्सौ, और कई बार गुजरे हैं कौन? ये मुशरिक इस कस्बे के पास से जिस पर पथराव किया गया था बुरी तरह से। किन की तरफ इशारा है? मक्का वालों की तरफ। क्या आज किस मुंह से अल्लाह के नबी को झुटलाते हैं? क्या कभी अपनी तिजारतों में अपने कारवानों के साथ सदूम की बस्तियों में से नहीं गुजरे? उसके इर्द गिर्द की उजड़ी हुई बस्तियाँ जहाँ कौम लूत आबाद थी, जिन्होंने अपने रसूल की दावत को झुटलाया ठुकराया, फिर भी अपनी बुराइयों से बाज ना आए तो पत्थर बरसाए गए, क्या ये कभी ना वहाँ से गुजरे? इनको नहीं पता चलता कि अल्लाह के पैगाम देने वालों को झुटलाने का क्या नतीजा होता है? लेकिन जब कौमें नहीं मानती तो उमतिरत मतरस्सौ, बुरी बारिश बरसाई गई। मतर से पत्थरों की बारिश को कहते हैं मतर, और वाकई इस कौम पर पत्थर बरसे थे। ऐसे लोग जो हैं ये अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं। कौम लूत की तरफ इशारा है, पीछे कई जगह हम पढ़ चुके। मक्का वाले जब फ़लस्तीन और शाम की तरफ जाते थे तो रास्ते में इस बस्ती से गुजरते थे, और कहते हैं कि इतने वाज़े निशानात थे इस कौम के वहाँ कि इनके ज़ुबान ज़द आम हो चुकी थी इनकी कहानियाँ। पीछे आपको लिखा चुकी हूँ, 5 बस्तियाँ थी वहाँ की सदूम और अमूरा के नाम पे, जहाँ पे इनकी बारिश बरसी गई थी, और अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को आज तक मिसाल बनाकर रख दिया कि वहाँ बहरे मुर्दार के नाम पे गंदे पानी का एक यानी समंदर अल्लाह ताला ने बना दिया, दूर से भी गुजरो तो वहाँ से बदबू आती है। कैसे वो बस्तियाँ जो कौमें अपनी मईशत पे बतिरत वाली कैफियत में होती हैं, अल्लाह ताला उनको उठा के फेंक देता है। अफलम यकून यरौनहा, क्या वहाँ से गुजरते हुए वो इसे देखा नहीं करते? आंखें नहीं हैं इनके पास? इन उजड़े हुए शहरों को देखकर इनके दिल नहीं खौफ खाते? क्यों इबरत हासिल नहीं करते? उसकी वजह भी बता दी, बल कानुला यरजून नुशूरा, बल्कि हकीकत यह है कि इन्हें दोबारा जीने की उम्मीद ही नहीं है। हकीकत यह है कि दोबारा जीने की उम्मीद ही बंदे को फुरकान देती है। क्या चीज़ मेरे हक में बेहतर है, क्या चीज़ मेरे हक में बुरी है? कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसका आपके दिल में सही तौर पे इल्का कर सके सिवाय अल्लाह के डाले हुए फुरकान के। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह जो भी काम करूं, जो कदम उठाऊं, वो करूं को जो मेरी आखरत के लिए, मेरे दुनिया के मामलात के लिए बेहतरीन हो। जब बंदे को आखरत की उम्मीद नहीं होती ना, तो वो सिर्फ इस दुनिया के काम करता है। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि जैसे हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, रहते हैं, अगर हमें पता है कि हमने कहीं भी नहीं जाना, हमारी वही मसरूफियात हैं, हमारी वही ज़िंदगी की रूटीन है, हम फोकस होकर यहाँ काम करते हैं। अगर हम में से किसी को मालूम हो कि हमने बिलफर्ज अमेरिका जाना है, हमने पाकिस्तान जाना है, हमारा जहन फिर उधर की तैयारी करने लगेगा। अच्छा आपसे ये होगा, अच्छा आपसे एक हफ्ते बाद ये होगा, आपसे ये करना है, फिर शॉपिंग तैयारी। जहाँ जाने की उम्मीद होती है वहाँ के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, कभी जहनी, कभी हाथ की, कभी दूसरी। अब जिसका कोई मूड ही नहीं है, नंबर एक, प्लानिंग नहीं है, कोई टिकट नहीं उसने बुक कराई, कोई वीज़ा इशू नहीं कराया, उसने कुछ किया नहीं, वो क्यों वहाँ की तैयारियाँ करें? ये जो आज आपको मनमौजी का कल्चर दिखता है ना, जियो तुम अपनी मर्ज़ी से, उसकी वजह क्या है कि ला यरजून नुशूरा, किसने मरना है? मर गए तो मिट्टी हो गए। मैं युख्जिल इसाम वही या रमीम, कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को जबकि ये गल सड़ चुकी? तो अल्लाह कह रहे हैं असल बात ये नहीं है कि इनको नहीं दिखता लोगों के हालात, इनको ये उजड़ी हुई बस्तियां नहीं दिखती, बल्कि असल वजह क्या है कि ये लोग मरने के बाद जीने का यकीन ही नहीं करते। इसीलिए तो ये वो यकीन है जो बंदे की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां पैदा करता है, और इसके बगैर कोई बंदा अच्छे काम कर नहीं सकता। देखिए कि इंसान जाहिर परस्त है, आप जो काम करते हैं उसका फ़ायदा देखना चाहते हैं, हत्ता कि आप सफाई करें और आपको ना सफाई का फ़ायदा दिखे तो आप नहीं करेंगे। खाना पकाएं, कोई खा ही नहीं रहा, पड़ा पड़ा खाना गल रहा है, सड़ रहा है, कोई खा ही नहीं रहा, अगले दिन नहीं पकाएंगे। दुनिया के मामले में जब इंसान इस तरह सोचता है ना, तो आखिरत पे भी बाज़ दफ़ा यही कयास करने लगता है कि मेरी वो कोशिशें जिनका कोई नतीजा नहीं दिख रहा शायद ज़ाया हो गई। और बाज़ दफ़ा थोड़ी सी कोशिश से बहुत खैर आती है तो इंसान खुशफहमियों का शिकार होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये सोच भी बदल दी कि तुम्हें रिजल्ट ओरिएंटेड होने की ज़रूरत नहीं, तुमने अगर वाकई अल्लाह के लिए किसी काम को करने की नीयत की है तो तुम्हें इंजाम की फ़िक्र नहीं करनी, और ऐसे हालात से फ़ायदा उठाना है कि जिसने तुम्हें एक मोहलत दे दी है ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन मक्का वालों का हाल ये नहीं था, खड़मस्तियाँ सूझती थी। देखिए बल कानुला यरजूना नुशूरा, इनको तो दोबारा उठने की हशर नशर की कोई उम्मीद नहीं। अब इसके रवैये क्या दिखते हैं, आप ज़रा अगली आयतों को पढ़ते जाएं तो आपके सामने बिल्कुल जीता जागता किरदार आ जाएगा कि जो लोग दोबारा जीने के उम्मीदवार नहीं होते उनका हाल दीनदारों के साथ क्या होता है। वह इज़ार अव कई यत्तखिज़ू न का इल्ला खुजुवा, और जब वो आपको देखते हैं तो आपका तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या है उनके मजाक के लफ्ज़, आप हाईलाइट कर लें या अगला हिस्सा जो आयत का कॉमर्स लगा लें, इन्वर्टेड कॉमर्स। ये उनका जुमला अल्लाह ने पेश किया, अहाज़ल्लज़ी बासल्लाहु रसूला, अच्छा जी ये हैं वो साहेब जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। अच्छा जी, ओ माशाल्लाह इनको बनाया, वाह ऐसे होते हैं रसूल, देखो ज़रा घर कैसा है इनका, कपड़े फटे हुए हैं, ये कोई ऐसे है? इस पे भी नहीं रहे, अगला जुमला देखिए मजाक से भरा हुआ, इनका लयुदिल्लुना अन आलिहतिना, करीब था कि ये शख्स हमें बहका देता हमारे खुदाओं से, हमारे माबूदों से, हमारे बुतों से। लौलान सबर ना अलैहा, अगर हम न साबित कदम रहे होते उनकी पूजा पाठ पर। अस्तग़फिरुल्लाह, यहाँ तक जुमला, इधर तक आप कॉमा लगा सकते हैं। अल्लाह कहते हैं कि नबी का मजाक कैसे करते थे, लो ये है वो शख्स, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, इनको तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, इनको तो पढ़ना नहीं आता, इनको तो बोलना नहीं आता, भला यही रह गया था। और दूसरी बात देखिए उससे भी दिलचस्प, और वो क्या कि इनकादा लयुदिल्लुना, करीब था, इनकादा का मानी क्या करीब, यानी अगर ऐसा ना होता, हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसके चांस थे, इम्कानात थे, मतलब ये कि इसने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, किस बात का कि हमको हमारे माबूदों से अलग कर दे, बरगश्ता कर दे, हमारी थॉट्स बदल दे, हमारी सोच बदल जाए, हम अपने बाप दादा के तौर तरीक़ों से जो काम करते आ रहे थे, ये तो बड़ी कोशिश कर रहा था कि हमें उससे रुक दे, हाँ इल्लान सबर ना अलैहा, हाँ मगर हम जमे रहे। अब सबर कितना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ आज आपको सबर का एक एंगल डिफरेंट दिख रहा है, और वो क्या कि सबर अपनी ज़ात से कुछ भी नहीं है, यहाँ लिख लीजिए, सबर अपनी ज़ात से कुछ भी नहीं है, बल्कि सबर एक बहुत बुरी चीज़ है जब इसको आप बेमौका इस्तेमाल करें। इसको पहले एक मिसाल से समझें, आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के साथ हैंड ब्रेक भी हैं, ब्रेक भी है, क्यों लगाई हुई है, कहाँ रोको गाड़ी, जहाँ आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जहाँ टकराव का ख़तरा है, कोई बच्चा आ गया था आगे, किसी से टक्कर से बचना था, या कोई और वजह थी, इसीलिए होती है ना, वरना तो गाड़ी का नाम है चलते जाना। अब कोई हाईवे पे जाए और गाड़ी रोक दे, तो उसने क्या किया, सबरा, रोक दिया, क्या उसको वहाँ रुकना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था। तो सबर क्या है, एक होता है सबर अनिल मासी, गुना पे रुकना, यानी गुना देखा अब हैंड ब्रेक लगा ली, स्टॉप स्टॉप नो, मुझे नहीं देखना, सब चीज़ों पे कुफल लगा लिए, आँखों पे, कानों पे, बातों पे। लेकिन एक सबर बे मौका होता है, और वो कौन सा होता है, जो गुनाहों पे सबर किया जाए। एक होता है गुनाहों से सबर, एक है गुनाहों पे सबर, और वो सबर क्या होता है, मसलन क्या करें फिर, आज के दौर में तो ये होना ही है, अब बच्चे तो फिर ये तो ये करेंगे, और ये तो उम्र ही ऐसी होती है, और यहाँ रह के तो इसके सिवा कोई गुजारा ही नहीं हो सकता, और इस तरह की तो हालात हैं मर्दों के और ऐसी कमाइयाँ और ये वो, ये सब्र जो होता है ये ढीठपन होता है। देखिए सब्र के नतीजे में तकलीफ तो होती है। ड्राइवर को सबसे ज्यादा तेज गाड़ी चलाने में मजा आता है, किसी से भी पूछ लें। जितनी फास्ट ड्राइविंग आसान होती है ना, उतनी आहिस्ता चलानी आसान नहीं होती। लेकिन रुके तो आप हैं, तकलीफ तो आपको हो रही है, लेकिन वो कैसा सब्र है जिसके बाद अल्लाह का गजब बरसे। अगर सब्र करना ही है तो इंसान अल्लाह के रास्ते में नेकियां करते हुए सब्र करे। अल्लाह ताला के रास्ते में जब निकले एक इंसान, कोई उसके रास्ते में रोड़े अटकाए कि नहीं करने देंगे, आपको नहीं भी मुझे तो करना है, अब जो कहते हैं आप कह लें फिर। अब इस पे तो आप जमे क्यों? इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला। लेकिन अगर आपने गुनाह पे सब्र किया और रोते धोते फिर भी हैं, तो उस पे तो कुछ भी नहीं मिले। मसलन किसी भी जगह अगर ये कहा जाए कि वहाँ हिजाब करना मुश्किल है तो लिहाजा आप छोड़ दो, तो ठीक है छोड़ दिया, सब्र कर लिया। अब जो करना चाहते हैं तकलीफ तो उनको होगी ना कि हमने करना था हमने छोड़ दिया, तो आप सोचिए कि कर ले फिर, जो तकलीफ हो लोगों की बातें सुननी हो सब्र कर ले। कल कोई कह दे भाई नहीं नमाज नहीं मुसलमान पढ़ सकते तो छोड़ देंगे। और आज ये तो हुआ हमारे साथ, तो कहा कि शुक्र हम जमे रहे। आज आप देखिए इसको स्टबननेस कहते हैं, या आप अगर सब्र ना के नीचे एक डाउन एरो डालें, इंग्लिश में बेहतरीन इसका तर्जमा है स्टबन। एक होता है किसी चीज़ पे जम जाना, फर्म हो जाना, इस्तकामत, वो तो अच्छा सब्र है। और एक है ढीठपन, ये स्टबन का उर्दू ढीठपन होता है। हम तो शुक्र है ढीठ बन के अपनी कब्रों पे लोगों पे बैठे ही रहे और हम वहाँ गलत काम करते ही रहे, वरना इन्होंने तो हमारे अकीदे बदल ही देने थे। कितने लोग हैं जब वो कुरान से दूर जाते हैं तो वो शुक्र करते हैं, शुक्र हम बच के आ गए हैं, हमने अपने बाप दादा के अकीदों को रोग नहीं लगाया, शुक्र है हमारे ऊपर इनका रंग नहीं चढ़ा। और वो खुशियाँ मना रहे होते हैं, ये भी खुशियाँ मना रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं वसौफ़ यालमून, ए नबी अन करीब ये जान लेंगे, कब हीन यरऊन अल अज़ाब, जब ये हमारे अज़ाब को देखेंगे। क्या जान लेंगे? यहाँ फिर हाईलाइट कर लीजिए, मन अदल्लु सबीला, कौन है ज्यादा भटका हुआ रास्ते, ये नबी या तुम? तुम अपने बाप दादा के नाम पे गलत कामों को करना अपनी कामयाबी की दलील समझते हो, तुम तो बच के आ गए, तुम तो किसी के हाथों में ना लगे, किसी ने तुम्हारे अकीदे ना बदले, लेकिन बताओ कि तुम बच के बचे हो या ये नबी जो है ये गलत रास्ते पे है कि तुम हो? मन अदल्लु सबीला, कोई तो होगा। और असल बात ये नहीं है, कोई बाप दादा के तौर तरीकों का इनको प्यार नहीं है। बाप दादा से और रस्म व रिवाज से और ख़ानदान से इतनी मोहब्बत होती तो आज तक वही रवायात ही कम अज़ कम कायम रखते जो हमारे बाप दादा की थी। चलो उनके बाकी कामों को तो छोड़ें, उनके रहने सहने, उनकी सादगी, उनके अच्छे कामों को तो लेते, असल बात क्या होती है, अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, ये है असल बात। इसको आप अपने नोट्स में मोटा मोटा करके लिखेंगे इस आयत को। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने मुलाहिजा फरमाया, इस अहमक को जिसने बना लिया अपना खुदा अपनी ख्वाहिश को, अफ अंत तकून अलैहि वकीला, तो क्या फिर आप इसके जिम्मेदार हैं? ये जो तासुब और हठ धर्मियों से काम ले रहे हैं, इनका हाल ये है कि ये अल्लाह के नबी की खूबसूरत बातों को अपने से दूर करके या उनसे दूर हो के ये खुश हो रहे हैं कि हमने शुक्र है अपने आप को बचा लिया, और इसकी तो बातें ही बड़ी प्यारी हैं और दिल में घर जाती हैं और एक दफ़ा सुन लो तो दिमाग में जम जाती हैं, ना सुनो वरना तुम्हारा दिल इसकी तरफ मायल होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों को छोड़कर पुराने बाप दादा के तौर तरीकों पे आ जाते थे। इसका एक ही तरीका ये था कि तुम आंखें बंद रखो, कानों में उंगलियां ठोंस लो, ना सुनो ना सुनने दो, ना मानो ना माननी पड़ेगी। अल्लाह कह रहे हैं ये लोग कौन हैं जिन्होंने अपना खुदा अपनी ख्वाहिश को बना लिया, इन लोगों ने अपनी अक्लों के आखिरी चिराग को भी बुझा दिया, बड़ी से बड़ी दलील को भी मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि जो हक के नूर को देखकर आंखें बंद कर लें, जो महज अपनी ख्वाहिश नफ्स के इबादत गुजार हों, इनका नफ्स इनका अपना खुदा हो, जिधर वो चाहता है उधर इन्हें हांक कर ले जाता है, वो इसी की पूजा में मगन हो जाएं, तो बताइए क्या फिर ऐसे लोगों को आप हिदायत दे सकते हैं? ए नबी, क्या आप इनका गम करेंगे? ये तो जानवरों से बड़े हुए हैं। अम तख सबु अन अक्सरहुम यस्माउन औ याकिलून, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि इनमें से अक्सर सुनते हैं या कुछ समझते भी हैं? यानी आपका ख्याल है कि ये आपकी बातें सुन और समझ रहे हैं? नहीं, इन हुमिल्ला कल अनाम, मगर ये तो जानवरों की तरह चौपायों की तरह, बल्कि बलहुम अदल्लु सबीला, ये तो इससे भी ज्यादा हद से भरे हुए हैं, ये तो इससे भी ज्यादा गुमराह है। क्योंकि जानवर को तो फिर अपने मालिक की पहचान होती है, वो भी नमक हलाल होता है, वो भी पाँव चाटता है अपने मालिक के, उसका हुक्म मानते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, कोई दूध देते हैं जानवर, किसी का गोश्त खाते हो, किसी पे सवारियां करते हो, सूरत नहल में डिटेल्स पढ़ चुके। लेकिन ये ना तो अपने खालिक को मानते, ना उसके एहसानात को मानते, ना उसका शुक्र अदा करते, ना उसकी तरफ चल पड़ते। इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्यों पैदा किए गए, क्या इनका हाल है, किस तरीके से ये बात होती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फिर ऐसे लोग वाकई आपकी बात से फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ एक बहुत ही अहम मौजू को छेड़ा गया, और वो क्या है कि खुद को खुदा बना लेना। लिखिए ज़रा लफ्ज़ खुद और खुदा, क्या फ़र्क है? वो निकाल दें खुद में से और अलिफ लगा दें आखिर में, खुदा बन जाना। खुदाई का दावा तो चंद लोगों ने किया था, वो तो बदनाम हुए नाहक, नमरूद और शद्दाद और फिरौन जैसे, अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन हकीकत क्या है कि आज भी अना का बुत नहीं टूटा हुआ। आज जब हम अपने इस नफ्स को, अपनी अना को रब्बुल आला बनाते हैं, तो इंसान के रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं, और वो इन रुकावटों को पार नहीं करना चाहता। किसी को माबूद बनाना क्या होता है? उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा मुकाम देना। लिख लें, हमारे यहाँ तसव्वुर में बस आता है कब्र के आगे जाके सजदा करना, हालांकि किसी को बुत बनाना, कोई उसके आगे पूजा करना ही नहीं होता। उसे ज़िंदगी में सबसे ऊंचा मुकाम देना, प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना, टॉप 10 में रखना, हिट लिस्ट पे रखना। ये इंसान का अपना नफ्स भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। ये कौन सा किरदार सामने आ रहा है? मनमौजी किरदार। हर बात बस मेरी मानी जाए, हर वो काम करूंगा जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है। दीन का भी वही वर्जन मुझे कबूल है जिसके अंदर मेरे मुफादात पे चोट नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मा तख्त जिल्ल समाई, इस आसमान की छत के नीचे अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद पूजे जाते हैं, उनमें से अल्लाह के नज़दीक बदतरीन माबूद वो है जो ख्वाहिश नफ्स है, जिसकी पैरवी की जाए। तबरानी की रिवायत का खुलासा है। आप सोचिए एक लम्हे के लिए, ज़रा आप इंसान को बिल्कुल खुद मुख्तार कर दें, जो चाहो करो। थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ 1 घंटा अपने घर में ये ऐलान कर दें कि बच्चों तुम जो चाहो करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई हुकूमत ऐलान कर दे 1 घंटे तक रियाया जो चाहे कर ले, मेरा ख्याल है वो घंटा कयामत का घंटा हो जाएगा। किसी को पुलिस का डर ना रहेगा, किसी को चोरी चकारी का डर नहीं रहेगा, और न जाने क्या जुल्म सितम हो जाएंगे। वही बात के लफ्ज़ अदा था, बिगड़ जाएंगे ज़मीन व आसमान अगर हक इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करे। हमने सूरत हज में इस पर डिटेल से बात की थी कि अगर मर्जी पे बच्चों को ही छोड़ दिया जाए कि बेटो आपका जो दिल चाहे कर लो, स्कूल जाना है मर्जी है, चले जाओ तो चले जाओ, क्या करना है सो जाएं, अच्छा चले जाएं, जो कर लो मर्जी, आप देखिए कि आपके घर का निज़ाम नहीं चलता। शौहर बीवी को मर्जियाँ करने दें, बीवी शौहर को मर्जियाँ करने दें, काम नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ कल्चर ही ये दिया जा रहा है कि तुम अना, आज के दौर में अना का कल्चर है, मैं मेरी ज़ात, मैं बड़ा हूँ, बड़ा मोटा हो जाता है ये बुत। इस आयत पे हम आगे जाके आयत 52 में बात करेंगे मज़ीद दोबारा, क्योंकि इसका ताल्लुक है, इसका इलाज अब सबक के आखिर में भी बताया जा रहा है कैसे इस नफ्स को मारा जाए। लेकिन याद रखिए कि हर बंदा अपने आप को चेक करे, क्या मैं इयाका नाबुदू व इयाका नस्तईन कहने के बावजूद अल्लाह के बजाय अपनी मर्जी मानती हूँ, अपनी ख्वाहिशात को माबूद तो नहीं बना रखा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि खिलाफ़े शरा ख्वाहिशात नफसानी भी एक बुत है, यानी हर वो ख्वाहिश जो शरा के तकाज़ों से टकराए। कहा यह ऐसा बुत है जिसकी परस्तिश की जाती है, और फिर दलील में ये आयत पढ़ा करते थे कि देख लो इसमें लिखा हुआ है। आप देखिए कि जानदारों में अगर देखें ना कि कौन अपनी सबसे ज़्यादा बात मानता है, तो इसकी मिसाल जानवर है। जानवरों की आदत होती है जब चाहें खाएं, जहां चाहें जाएं, खाएं पिएं सोएं, फ्री सेक्स। आज डार्विनिज्म का नाम लगाने वाले इंसान को बंदरों की औलाद क्यों साबित करते हैं, कभी आपने गौर किया? क्या बंदर से बड़ी मोहब्बत है, मंकी से उनको बड़ा प्यार है? प्यार कोई नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दफ़ा मान जाओ कि मेरा दादा बंदर था और मेरा परदादा बंदर था, फिर आगे हम खुद ही मनवा लेंगे कि अच्छा जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, कपड़ों से आजाद कर दो। जानवर जो हैं वो तो फ्री सेक्स करते हैं, तुम भी फ्री सेक्स हो जाओ, और इस तरह से हम बाकी सारे काम खुद ही करा लेंगे। हो क्या रहा है कि इंसान को अल्लाह ने तो आला तकवीम दी, लकद खलक नल इंसान फी अहसनी तकवीम तुम मरदद ना हो असफल साफिलीन। आज दिन ब दिन जो कल्चर हमारे इर्द गिर्द आम किया जा रहा है ना, ये असफल से असफल का दर्जा है। बिल्कुल तुम पागल लगो, दीवाने लगो, बेकार लगो, कर लो, क्योंकि तुम्हें नुमाया होना है, बड़ा बनना है। मैंने तस्वीरों में तो देखा हुआ, लेकिन रियल लाइफ में पिछले हफ्ते में मुझे एक ऐसी लड़की को देखने का इत्तेफाक हुआ कि मैं डर गई। और हमारी टिकट चेकर थी, वो ट्रेन पे सफर में पूरे आधे सर को उन्होंने टिंट किया हुआ था, यानी जब मैंने उसको पहली दफा देखा वल्लाह ही मैं डर गई। पूरे सुर्ख बाल और ये पूरा इधर इस कान से यहाँ तक पूरी वाइट, नीचे से जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी टिंट दिख रही थी। और जब उसने मेरी तरफ मुंह किया तो मैं एकदम चौंक गई कि पता नहीं अजीबो गरीब, जैसे एक कोई भी बुरे से बुरा तसव्वुर कर ले। हैं भी ब्लैक थी गालिबन क्या, और वो बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही थी। मैंने सोचा कि इसको कोई एक बंदा भी इसको कह सकता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये क्या है कि लोग मुझे देखें। हम कपड़े बुरके पहन के ओढ़ के फिरें, लोग कहते हैं नहीं नहीं लोग देखते हैं, तो शुक्र करो बगैर इतना कुछ किए लोग आपको देख रहे हैं। लोग तो एड़ी से चोटी का जोर लगा लेते हैं कि कोई हमें देखे। क्या आज ये कल्चर नहीं आ गया, हर बंदा अपनी मनमानी करना चाहता है। अल्लाह ताला कह रहे अफान ततकूना अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे लोगों को कोई फायदा दे सकते हैं? आप ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां मत कबूल करें, छोड़ दें इनको इनके हाल पे, क्योंकि इनको अपनी बात माननी है। ये वो लोग हैं कि जो अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे बंदे की कौन मदद करेगा जो मदद कराना नहीं चाहता, जो सुनना नहीं चाहता उसको कौन सुनवाएगा, जो समझना नहीं चाहता उनको कौन सुनवाएगा। और आप देखिए कि सूरत फुरकान मक्की सूरत है, मक्का में बुत तो बहुत सारे थे, कभी आप पूरे कुरान में नाम लेकर लात मनात उज्जा का नहीं करेंगे। एक जगह आए हैं सूरत नूह में, वो कौमे नूह के बुतों की बात है। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं इनके बुतों से रुस्वा नहीं किया। 360 बुत थे, नाम भी थे उनके, कहीं नहीं किया, सिर्फ इस बुत का इशारा कर दिया कि आपकी जो मुखालफत है वजह आपको पता है। ये लात नहीं इनको रोक रहा, ये मनात नहीं रोक रहा, ये उज्जा नहीं रोक रहा, बल्कि इनका अपना आप इनको रोक रहा है। ये जिहाद अभी इन्होंने किया ही नहीं, अगले कहाँ करेंगे? इसी का जवाब 52 आयत में आगे दिया जाएगा। सूरह जासिया आयत 23 में भी आता है, अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहू हवाहू, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया? वह अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने उसको बहका दिया इल्म के बावजूद। अस्तग़फिरुल्लाह, सबसे बुरा बहकना है इल्म वालों का बहकना। वह ख़त्म अला समिही व कल्बिही, और मोहर लगा दी उसके कानों पर उसके दिल पे। मत सोचिए कि 18 पारे पढ़ने के बाद हम इल्म वाले हो गए तो अब हम पे कोई जोर नहीं चलेगा, बहुत सारे जोर आएंगे। आंखों पे मोहरे, कानों पे मोहरे, वही चीज़ जो सुनने के बाद चैन नहीं आता था सुननी तो उबर लगेगी, वही चीज़ जिसमें दिल अटका रहता था। फरमाए वकल भी ही, दिल बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर सकता। वजाला बसरी ही गिशावा, और उसकी आंखों पे पर्दे डाल दिए। वो ख्वाहिश जो इंसान को गूंगा बहरा अंधा कर दे वो उसका इलाह है। बाद लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ जंक्स तो ऐसे देखेंगे कपड़े फाड़ने लगते हैं, माँ बाप के आगे गुस्से से बोलने लगते हैं, थप्पड़ तक मारने लगते हैं माँ बाप को अगर उनकी ख्वाहिश ना पूरी करें। जैसे घोड़े को अगर ना लगामे दें तो बाद जब गुस्से में अपने ही मालिक को रौंद देता है, ऊंट अपने मालिक को खा जाता है। आज की नस्लों और आज के लाइफस्टाइल ने हकीकत में औलादों को सरपट भागने वाले घोड़े बना दिया। अल्लाह के नबी की वो बात बिल्कुल सच होती हुई दिखती है कि क्यामत नहीं आएगी जब तक कि लौंडी अपने आका को न जने। साहबा कहते हैं मैं ये समझ ही नहीं आता था कि एक औरत ने जब एक बच्चे को पैदा किया तो उसका मालिक कैसे हो गया। कहा इसलिए कि क्यामत के करीब औलादें इतनी नाफरमान होंगी कि बच्चे अपने माँ बाप को लौंडी गुलाम की तरह ट्रीट करेंगे। ये किस चीज़ का जोर है? ये इलाह होने का जोर है। तुम बड़े अहम हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारी बहुत मर्जी है। कोई हाथ तो लगाए तुम्हें, तुम 911 पे फ़ोन कर देना। तुम्हें कोई कुछ कह के तो दे के तुम आ जाना हमारे पास। कितनी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी, अब कुछ मैंने भी सुन ली हैं कि किस तरह बच्चे माँ बाप को पकड़वा के चल पड़ते हैं। खुद पुलिस बुलवा ली जाती है कि आए और हमारे घर वालों को पकड़ें क्योंकि ये हमारे साथ जुल्म करते हैं। क्या हो रहा है आज? मैं सोचती हूँ हमें चैन कैसे पड़ता है, हम कैसे आराम से सो सकते हैं, हमें सर्दी का एहसास कैसे होता है, हमें गर्मी का एहसास कैसे होता है, भूख प्यास क्यों नहीं हमारी मटती। चारों तरफ आंधियां चल रही हैं, शिर्क की और तूफान की। अल्लाह तो अपने बराबर किसी को नहीं पसंद करता, कहाँ अल्लाह के ऊपर आ जाए। अल्लाह के बराबर उससे ऊपर चली गई वो ख्वाहिश, वो कैसी ख्वाहिश है। तो हर वो चीज़, हर वो मोहब्बत जो अल्लाह का हुक्म भुलवा दे, वो औलाद की मोहब्बत है या माल की मोहब्बत है या पैसे की मोहब्बत है या घरों की मोहब्बत है या सोने चांदियों की मोहब्बत है, वो खाने पीने की मोहब्बत है, ये आपका इला बन चुका।